તારીખ 1-10-1990 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 49
પ્રવચન
तो बचता है वो तो 100% बचता है पूरा का पूरा
से किसने बचाया तो उसने बचाया, बचने वाले को तो पूरा बचने का मिलता है, इसलिए उसको परमेश्वर तुल्य दिन करके जो कार्य परमेश्वर कर सकते हैं ऐसा कार्य सत्पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसा एक जाति का निमित्तत्व देख कर उसमें परमेश्वर बुद्धि की स्थापना की जाती है, जो सभी दृष्टिकोण से सही है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से तो सही है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखे तो भी सही ही है, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उनको परमेश्वर के स्थान में देखा जाता है, देखा जाता है, ये उचित भी है, बिल्कुल अनुचित नहीं।
प्रश्न तो यह कि देखा न जाए तो ताज
ये अनुचित, अगर ऐसा नहीं देखा जाए तो वो अनुचित,
रुक नहीं सकता वो, ये मां रुक नहीं सकता, उसको परमेश्वर बुद्धि आएगी, उसको
आएगी,
बचेगा उसको,
डॉक्टर के प्रति आते हैं तो इसके प्रति आएगी आएगी,
लेकिन जो बचा हो बचा नहीं हो तो वो फिर सब बातें इसमें तक निकलेगा।
हाँ, जिसको इस प्रकार का उपकार का कोई ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, उनको ऐसा प्रश्न उठ सकता है, लेकिन जो इस लाइन में आए हैं उनको तो ये होगा ही नहीं, ये तो परमेश्वर भक्ति की बात बिल्कुल मर्यादा में रखकर के की, तो इससे भी अपने कहते हैं कि नहीं कहते, बाबू ने कहा कि नहीं कहा, ये भी सही है, मतलब ये भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हम अनंत तीर्थन करके संस्करण में जाके आए, फिर भी हमारा संसार समुद्र का किनारा नहीं आया, हमारा काम नहीं संपन्न हुआ। अगर एक सत्पुरुष से हमारा काम संपन्न हो जाता है तो ये अनंत तीर्थंकरों से भी अधिक है, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है, न इसमें किसी तीर्थंकर के अवमानना है, और ऐसा कुतर्क सोचना भी नहीं चाहिए, ये तो कुतर्क है, क्योंकि वो न्याय विरुद्ध है, इसलिए कुतर्क है, न्याय संगत तो वो बात है कि हम अनंत तीर्थंकरों के समोसन में जाके भी जो बात नहीं पाई वो तो अगर एक सत्पुरुष से हम पाते हैं तो ये अनंत चिंता से भी ठीक है, इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और इसमें से अनर्थ नहीं निकाले उसने, उन्होंने तो स्पष्टीकरण भी दे दिया है साथ साथ, क्योंकि समझते थे कि बैठने वाले को सुनने वाले को कभी किसी को गड़बड़ी हो सकती है, उन्होंने दृष्टांत दे दिया कि जगत में तो बहुत से करोड़पति हैं, लखपति भी है बहुत से, लेकिन मुझे जरूरत पड़ी तो एक लखपति ने मदद ऐसी की कि अब मैं करोड़पति अरबपति हो गया, जिस टाइम में एक मेरे पास एक पैसा भी नहीं था उस वक्त उन्होंने मुझे गली पे बिठा लिया कि तुम बैठो इधर, ये 25-50 हजार लाख रुपया रख लो, काम कर लो, ये काम करने से तुम तो आगे इतना बढ़ जाओगे कि जितना मैं भी नहीं आगे बढ़ा, फिर वो क्या कहेगा, जो अरबपति हो गया वो क्या कहेगा कि सारे जगत के अरबपति से भी मेरे लिए तो ये करोड़पति सबसे अधिक है, और ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है, दूसरे क्या काम करे, जो अपने काम में निमित्त नहीं हुए वो क्या काम करे, वो तो है और नहीं है, अपने लिए तो बराबर है, ऐसी ही बात है, इसलिए ये जो बात आई है ये बिल्कुल अनुभवपूर्ण बात आई है, कृपाल देव को इस भव में भले ही कोई सत्पुरुष का योग नहीं हुआ है, क्योंकि वे तो पूर्व भव में से ही आराधना लेकर के आए थे, उनकी आत्मा तो पूर्व से संस्कारित था, आत्म स्वभाव का संस्कार उसमें थे, इनके कोई इनके लिए कोई गुरु की आवश्यकता भी नहीं थी, वो अपने आप बिना गुरु अपना काम कर सकते थे, पूर्व भोग में गुरु मिले थे, ये जाते स्मरण स्वयं के स्मृति में ठीक इतना बात लिखा है। वर्तमान भाव में सत्पुरुष रूप गुरु नहीं होने पर भी ये बात लिखा है, यही कारण है इसका कि पूर्व भाव की तो स्मृति है, बात खुली नहीं है कहीं भी, लेकिन ये सिद्ध होता है इतनी जो बात आई है जिनके श्रीमुख से, इससे पता चलता है कि पूर्व भाव की स्मृति अपने को बराबर है। और वो भी स्मृति में है कि इसके पहले मैंने बहुत परिश्रम किया है, मैं अपने आप रास्ता ढूंढता था, ढूंढने में बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी रास्ता नहीं मिला और एक सत्पुरुष मिलने से सहज मात्र मिल गया। क्या एक सत्पुरुष मिलने से सहज मात्र में मिला? छह प्रकार का पत्र है बात मिला है के जो पैराग्राफ है जिसके वचन अंगीकार करने पर छह पदों से सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहज में प्रकट होता है, ऐसे प्रकट होता है परिश्रम कर करके मर गया तो भी नहीं मिला, और जिसके वचन के अंगीकार करने से सहज रूप से मिल गया बिना परिश्रम मनो मिल गया, ऐसी बात होगी। ये एक चमत्कार है, प्रत्यक्ष सत्पुरुष में यही चमत्कार है कि जिसके वचन मात्र से आत्मस्वरूप सहज में प्रकट होता है, और अनंत काल में जो काम संपन्न नहीं हुआ वैसा अपूर्व अपूर्व आत्महित का कार्य संपन्न हो जाए, जिसके प्रथम क्षण में स्वानुभव भाव के प्रथम क्षण में ही अनंत भाव के नाश हो जाता है, अनंत भाव का नाश हो जाता है, भाव की अनंतता का छेद बोल जाता है, ऐसा एक काम होता है। ये बात क्या है? आत्मस्वरूप सहज में प्रकट होता है, जिस आत्मस्वरूप के प्रकट होने से सर्व का जीव संपूर्ण आनंद को प्राप्त होकर निर्भय हो जाता है, सभी प्रकार के भय से रहित होकर के संपूर्ण आनंदमय हो जाता है। उस वचन के कहने वाले सत्पुरुष के गुणों की व्याख्या करने की मेरी तो शक्ति है, खुद ही ऐसा कहते हैं कि ऐसे सत्पुरुष के गुणों की व्याख्या मैं कैसे करूं। मैंने ये धर्मदास जी ने कहा कि श्री गुरु शिष्य को कैसे समझाते होंगे और शिष्य कैसे समझता होगा, बस बात रख देना पर ये समझाने का तरीका क्या है और ये समझने का तरीका क्या है, ये इस अनुभव में जा रहे उसको पता चलता है उसमें क्या चमत्कार है। जो आत्मस्वरूप बिल्कुल दूर नहीं है, चतुराम दूल है बिल्कुल दूर नहीं है, वो स्वयं का ही स्वरूप है, वो तो नहीं दिखने में आता है, और जो सहज मात्र में दिखा देते हैं जैसे अचली में जान सहज मात्र में दिखा देते हैं, इसके लिए कोई एक घटना है कोई ऐसी घटना है उसको बिल्कुल योग्यता होने से तो बता देते हैं कि देख अब कोई दूर नहीं है तेरे से। जब तुम जब तक तू भाव से दूर है तब तक तो ये तुझे कठिन दिखता है, दूर दिखता है, अप्राप्य दिखता है, मुश्किल दिखती है। योग्यता आने से तो जैसे तरना होते डूंगर तिक्का बड़ा इतना डूंगर हो दूर से तो एक तिक्का एक पत्ता पेड़ का भी उसके आगे आता है आपको पक्ष आता है बहुत उसको होता है आठ आठ उसके आड़ में डूंगर सारा नहीं दिखता। ऐसा ही महान परमात्मा एक विकल्प की ओर के आड़े नहीं दिखता है। जैसे तिनका जैसा है कैसा है विकल्प इनका जैसा है क्षण मात्र में तो चला जाता है। उसकी आयु भी लंबी नहीं है विकल्प की कोई लंबी आयु तो होती नहीं है। इसी के औस में एक बड़ा महापरमात्मा विराजमान है उनको जो बता देते हैं कैसे विकल्प को बाउंड करें और कैसे अपने स्वभाव को मुख्य करें आविर्भूत करें प्रत्यक्षता भी है विदकता भी है और विदकता तो कभी पुरुष हो ही नहीं सकते।
कैंसर का रोग महसूस होने तक तो डॉक्टर को करना कैंसर का रोग महसूस होने तक तो डॉक्टर करना
भाई कैंसर का रोग भी महसूस हो और रोग से मुक्त होने का भान भी हो कैसे बच गया मुक्त अपना मर जाता है तो वो तो बचा है उसको ये भान आता है तो बचता ही नहीं है उसको तो क्या पता चलेगा वो तो बचता है उसको पता चलता है। कोई मगर के मुंह से छुड़ा रहे अजगर के मुंह से छुड़ा रहे पकड़ लिया वो फिर भी जब तो अनुभव होता है कभी अनुभव होता है ऐसी बात है। समुद्र में कुछ गिर गए हो और उठा ले उसको हाथ पकड़ के गला पकड़ के खींचे वैसे श्री गुरु को तो वो खींच के ऐसी बात है। उस वचन के कहने वाले सत्पुरुष के गुण की व्याख्या करने की मेरी तो अशक्ति है कितनी महिमा की क्योंकि जिसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्म भाव को परमात्म तत्व को परमात्म स्वरूप को उसने मानो कुछ भी इच्छा किए बिना मैंने बदले की कुछ इच्छा किए बिना कुछ अपेक्षा रखे बिना मात्र किस कारण करुणाशीलता से दिया है। करुणाशील उसका स्वभाव ही करुणाशील है करुणा इसका स्वभाव है उसको करुणाशील कहते हैं। जो निष्कारण है अपने कारण से वो करुणा करते हैं दूसरों के कारण से नहीं करते। ऐसा सहज स्वभाव है ये मृत्यु सहज उठती है किसी के कारण से नहीं उठती ये तो जो पात्र नजदीक में आए उसका काम हो जाता है। उनको तो देखना भी नहीं है कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ तो सहज करुणा से इनके वचन निकल गए और जिसने ले लिया उसने ले लिया वो नसीबवंत है नहीं लिया तो उसका नसीब नहीं है क्या लेने वाले तो कोई किसी के सर में नहीं रखी बात
सैकड़ों वर्षों में ऐसा प्रज्ञावंत व्यक्ति नहीं होते कोई सैकड़ों वर्षों में कृपा जो ऐसा प्रज्ञावंत कोई व्यक्ति नहीं ऐसे अतिशय ज्ञान के आधार भक्ति सहित वो कहते हैं कि गुणग्राम करने में असमर्थ
इतना वचन योग है जिसका कवित्व तो बचपन से था पर वचन योग भी जबरदस्त है। तीन नमस्कार की इतनी वाक्य रचना तो देखो कहीं है क्या, सब उसके बारे में देखे कहीं पढ़ी गई कहीं, फिर वो कहते हैं मेरा सामर्थ्य, मतलब इनकी महत्ता उतनी है कि मेरे सामर्थ्य भी वो ज्यादा है, मेरे वचन योग के सामर्थ्य ज्यादा है, वो तो सत्पुरुष है लेकिन इनके वचन योग से सत्पुरुष की महत्ता अधिक है, जो इतने समर्थ वचन के योग के धारक होते हुए भी उसमें वो समाकृष्ट नहीं होते, इतनी महत्ता है ऐसा कहने का अभिप्राय है। मेरे वचन योग से भी ये बात कुछ अधिक है, आपको जो कुछ समझना हो सुन लो, नहीं समझना हो दूसरी बात है, लेकिन कहने का अभिप्राय बहुत गंभीर है। इस
एक वचन के ऊपर गंभीरता से इस विषय को समझने का आवश्यकता रहेगी।
हाँ,
क्या कहना चाहते हैं
इसमें गंभीरता बहुत है, इसका इतना समर्थ वचन योग भी जिसको नहीं कह सके तो कितनी महत्ता वाली चीज होगी। और ऐसी करुणा जिस पर किया उस पर ये मेरा शिष्य है ऐसा नहीं देखता, ऐसा होने पर भी मतलब जिसको जिस पर करुणा हुई उस पर भी ये मेरा शिष्य है ऐसा, मैं पक्षपात नहीं होता, शिष्य है श्री गुरु के चरण समीप रहता है, इस पर भी जिसको पक्षपात नहीं है क्या चीज वितरकता है। वितरकता कौन सी चीज होती है, उनके लिए तो सब संभव है, सबों के प्रति उनको संभव एक सरखा भाव लेता है, तो उनकी योग्यता के कारण नहीं लेता है, लेता है तो उनकी योग्यता के कारण लेता है, नहीं लेता है वो भी योग्यता के कारण। मेरे में कुछ लेना है न मेरे कुछ देना है, मेरे में से कुछ कमी होती नहीं, वो कहेगा कि आपको तो मैं आत्मा दे दिया, वो कहता है कि मैंने तो कुछ दिया नहीं, ये वचन निखरे वो भी स्वयं ही निखर गए, अपने श्रीमुख से जो वचन निकल गए वो भी सहज निखर गए, वो मुझे भी लेना देना नहीं है। कहते हैं कोई ये मेरा शिष्य है ये मेरा नहीं है, ये मेरे भक्ति करने वाला है मेरी भक्ति नहीं करता है, मेरी भक्ति करता है इसलिए मेरा है, इस तरह कभी नहीं देखा, इस प्रकार से कभी नहीं देखा। ऐसे सत्पुरुष को अत्यंत भक्ति से बार बार मैं नमस्कार करता हूँ, खुद ही नमस्कार करते हैं, तीन बच्चे क्या है बहुत प्रसिद्ध है, तीन नमस्कार जो है बहुत आजकल प्रसिद्ध है, बहुत असाधारण भाव उसमें आए।
सत्पुरुषों में करुणा इतनी, सत्पुरुषों में करुणा इतनी
जिसकी हद नहीं उतरी, जिसकी हद हम देख ही नहीं सके, क्या कोई नहीं देख सके ऐसी
आकाश में महान आकाश में महान
श्री गुरु तो आकाश से भी महान है, विकल्प उठे तो ऐसा कहे ये विनय का विकल्प है, निश्चय व्यवहार है कि नहीं है इसमें, विकल्प उठे तो ऐसा कहे कि मेरे गुरु तो आकाश से भी
महान
ऐसा अंदर में समा जाए तो बात खत्म, किसी के सामने सामने परमात्मा खड़े होते नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है साक्षात सुंदर देव बैठे हैं और जो परमात्मा है समय क्रम में लीन हो जाता है, चक्षु दर्शन तो बंद होता है, भक्ति में ध्वनि चलती हो तो श्रवण भी बंद हो जाता है, उपयोग तो एक साथ दो भी एक विषय नहीं करता कभी, स्वरूप में लीन हुआ तो बात खत्म, परमात्मा के ज्ञान में ऐसा आता है कि मेरी आज्ञा जो स्वयं प्रेरण हुआ उसने आज्ञा का पालन किया, यही मेरा उपदेश का तो तात्पर्य था, यही भी धन्य का सार था, ऐसा उन्होंने ग्रहण कर लिया। और मुझे कोई अपेक्षा भी नहीं है वो मेरे सामने देखे या मेरी ध्वनि सुने, ऐसी कोई अपेक्षा का है। अपेक्षा रखने वाले तो दीन हो जाते हैं। वास्तव में क्या होता है, जो अपेक्षा रखने वाले हैं वो तो दीन ही हैं, परमात्मा तो कोई अपेक्षा रखते नहीं, ऐसे सत्पुरुष भी कोई अपेक्षा रखते नहीं।
तुम्हें श्रेणी वाली आवे, तुम्हें श्रेणी वाली आवे तो केवली के समान
हाँ बन जाता है, बन जाता है खुद ही परमात्मा। 500 धनुष ऊंचे अंतरिक्ष में दर्शन करते हैं, विराजते हैं, बिल्कुल इसके बना बराबर में इसकी सीट लग जाती है, लगानी नहीं पड़ती।
पहले का शिष्य कुछ क्षण पहले इनका शिष्य,
वो तो रिजर्वेशन हो ही गया है, ऑटोमेटिक सब हो जाता है। वहाँ जहाँ बैठे हैं मंदिर आज वहाँ से सब श्रेणी में ऊपर चले जाते हैं 500 दिनों से, और फुटबॉल पर कमल के रूप में रचना हो जाती है इसकी, कोई बनाने नहीं जाता, सीमेंट लेकर के सोना लेकर के कोई जाता नहीं। वहाँ परमाणु आकाश में परमाणु देव कमला कमलासन के रूप में जाते हैं, और इससे भी अंतरिक्ष में विराजमान हो जाते हैं। विकल्प आता है थोड़ा स्टाफ को लगाता है, एक टीम को ले जाए तो काम करने लग जाए, समझ उनको तो विकल्प आता है, बढ़िया से बढ़िया हो तो ऐसा हो जाता है, हो जाता तो उनको भी आश्चर्य होता है, ऐसा हो गया इतना बढ़िया तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो स्वयं की बनता है, स्वयं विलीन होता है, स्वयं खड़ा हो जाता है, इनका विकल्प है। कहने में आता है कि कुबेर ने बनाया, कोई अपने घर से माल सामान लेकर छोड़ा आया था, कुबेर कोई अपने खजाने से ना थोड़ा कोई चीज लेकर आता है,
की वर्षा होती है, की होती है,
सब स्वयं होता है, ऑटोमेटिक होता है, किसी को निकल पाता है अपना रक्षा करने का।
वही स्त्री गुरु की कृपा की प्रसादी फल जाती है,
ये सत्पुरुष तो परमात्मा ही है, ऐसी बात भी 225 में आगे माने गलिते विज्ञाते परमात्मने, तो पत्र है
ना
जी, आदि माने
223
पत्र, इसमें जो पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ है भागवत का दृष्टांत दिया है कि परमात्मा और आत्मा का एक रूप हो जाना यह पराभक्ति की आखिरी हद है। जो दूसरे परमात्मा को भक्ति ध्यान करते हैं उसमें हम ऐसे ध्यान करते हैं कि हम दोनों एक हो गए, मैं परमात्मा में लीन हो गया, इसको पराभक्ति कहते हैं, आखिरी हद कहते हैं। एक यही लय रहना पराभक्ति है, ऐसे परिणाम में भिन्नपना नहीं है, अभिन्न भक्ति जिसको कहते हैं। उनको लाइए ये बात यहाँ से, स्वरूप में जो अभिन्न होते हैं धीरे धीरे में वो बात आई है, लेकिन ये उत्कृष्ट होकर के फिर दूसरे परमात्मा में ये लोग लगाते हैं। परम महात्मा गोपांगना है, गोपांगना को एक विशेषण लगा है। तो वो महात्मा नहीं थी, परम महात्मा थी, क्योंकि इतनी भक्ति की उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र की जो भक्ति की तो उतनी की, तो इतनी किसी ने नहीं की, इसलिए उसको परम महात्मा कहते। मैंने वहां तो ऐसा कि वो पागल हो जाया करते थे, श्री कृष्ण को देखते थे तो इसके पीछे वो पागल हो जाते थे, उनको पता ही नहीं रहता था कि हम कौन हैं। हम स्त्री हैं, हमको हमारी मर्यादा में रहना चाहिए, हमारी लज्जा में हमें रहना चाहिए, वो बात उनको छूट जाती थी, उनके भक्ति में विवश हो जाते थे। इसलिए कहते हैं वो परम महात्मा, इतनी भक्ति करने वाली थी। महात्मा वासुदेव की भक्ति में इसी प्रकार से रही थी। अब कहते हैं कि परमात्मा को निरंजन और निर्देह रूप से चिंतन करने पर ये लय अनाज कर रहे हैं। वहां दो अभिप्राय हिंदू मत में दो अभिप्राय कि परब्रह्म है, परमात्मा परब्रह्म है, वो निरंजन निराकार होते हैं और निर्गुण होते हैं। सब सब वो नेगेटिव विशेषण लगाते हैं, निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, ऐसे लगाते हैं। तो उसका ध्यान कैसे करें जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई गुण नहीं। तो अंदर मन कलंक नहीं है वो ठीक है, तो कैसा ध्यान करें। तो इसलिए कई लोगों ने परमात्मा की मूर्ति की कल्पना करके बना ली और उसकी पूजन करने लगे। तो ऐसे उनको जैसे देव का कोई शरीर हो, चतुर्भुज हो, मुकुट पहना हो, वो हो, ये हो, वैसे हो, महामंडल हो, ऐसे सब प्रकार के लगा दिए। परमात्मा को निरंजन और निर्देह रूप से चिंतन करने पर यह है अनाभिकट है। इसलिए जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है ऐसा देहधारी परमात्मा उस पराभक्ति का परम कारण है। तो पराभक्ति करने के लिए उसको देहधारी बना लेते हैं, परमात्मा देहधारी नहीं करते लेकिन उसको देहधारी बना लेते हैं। ऐसे अब ये तो बात रही दृष्टांत की, अन्य मत के अनुसार तब बात जो कहनी है वो सही बात है कि उस ज्ञानी पुरुष के सर्व चरित्र में एक भाव का लक्ष्य होने से उसके हृदय में विराजमान परमात्मा का एक भाव होता है और यही प्राप्ति है। ये जो बात कही रहस्य बात है, कहने का रहस्य ये है कि ज्ञानी पुरुष के सर्व चरित्र में एक आचरण भी ऐसा नहीं उसको लगता कि ऐसा क्यों करते हैं। सर्व चरित्र लिया जिसके सभी आचरण वंदन के योग्य हैं, कहा उसको फिर जिनके सभी आचरण वंदन के योग्य है ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले और इसके किसी आचरण से बुद्धि में कोई शंका उत्पन्न हो जाए कि ऐसा क्यों, बुद्धि स्वीकार नहीं करे तो मोक्ष को क्या करना, ऐसा करके प्रश्न उठा लिया। उत्तर तो दे दिया कि इनके तो सभी आचरण बंधन के योग्य है, प्रश्न तो बाद में उठाया है कि उसकी बुद्धि अगर स्वीकार नहीं करे तो भी उसको बुद्धि को रोकना है, हाँ इस बुद्धि को रोकना, इस रास्ते पे तुझे नहीं जाना है, तुझे इस रास्ते पे जाना ही नहीं है, ऐसे बात
या ऐसा भी है कि जैसे स्वरूपाचरण चरित्र जो है वो ज्ञानी के सब चरित्र में, चाहे उदय के प्रसंग हो चाहे कोई प्रसंग हो, उसमें उसको स्वरूपाचरण चरित्र के दर्शन होता हो।
ऐसा है, ये बात अधिक सूक्ष्म है। उदय भाव ज्ञानी को ऐसे होते हैं कि अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के विभिन्न ज्ञानियों को होते रहते हैं, एक से किसी को नहीं होते, केवल यहाँ का नहीं होता ज्ञानियों को क्या कहेंगे। देखें जहाँ अपना परमात्मा से परिणाम के अनंत गुण व्याप्य व्यापक भाव से एक ही जगह एक ही परमात्मा पद में एकाग्र होने का कार्य करते हैं, करने लग जाते हैं, उस वक्त उदय भाव में कितना फर्क पड़ता है ये बड़े विषय बात सोच अपन जो कर रहे हैं वो
जी हम याद से
नहीं कर रहे हैं उसमें से वो निकाल रहे हैं। अगर इस पर नजर आ गई योग्यता अवश्य पात्रता अवश्य जो कपालोदी कहते हैं ये बात मिल जाएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या बनेगा कि उस ज्ञानी पुरुष के सर्व चरित्र में एक भाव का लक्ष्य हो जाएगा। एक भाव क्या चीज है, जिसको परम प्रेम होने से द्वैतपना नहीं रहे उसको एक के भाव कहते हैं। उतना प्रेम आएगा उसके ऊपर उतना बहुमान आएगा कि अभिन्न भाव से भक्ति हो जाएगी, ये कहते हैं उतना अभिन्न भाव आ जाएगा, इतना बहुमान आ जाएगा। और उसमें क्या और क्या दिखेगा कि उसके हृदय में विराजमान परमात्मा है वो तो दिखेगा उतना ही नहीं, उससे भी एक भाव हो जाएगा। कहां तक बात को ले गए तो स्वाध्याय चला है या नहीं खुला है, तो कहां तक ले जाते हैं इस बात कि ज्ञानी के चरित्र में जो चरित्र नायक है, ज्ञानी के चरित्र के जो चरित्र नायक है वो तो स्वयं के परमात्मा है, परम पद है
जी।
और उसमें उसका एक पड़ा है, ये इसका चरित्र है, इनको तो उदय भाव में भी वही दिखता है ऐसा कहते हैं उदय भाव में भी वही दिखता है, तो उसको वहां एक किताब हो जाती है। परमात्मा का दर्शन होता है उतना ही नहीं, उसमें भी एक किताब होती है उतना प्रेम आता है, उतनी भक्ति
आती है। अद्वैत भाव में तेरे से नहीं वाणी पर लो अपने वो उतना साक्षात्कार है,
वाणी उतरी जाए पछी
तो उतरी
जाए, वाणी उतरी जाए पछी पछी बाहर में लगे और यही पराभक्ति है, उसको ही पराभक्ति कहने में आती है। ये भक्ति का निरूपण किया है ऐसा नहीं, ऐसी भक्ति का निरूपण किया है उसको भक्ति कहते हैं।
जिस भक्ति में अपने अस्तित्व का निर्णय
अस्तित्व अपना मिल जाता है,
मिलिन धन्यवाद
अस्तित्व मैंने जो देव भाव में हम पढ़ा था, जो जितने जितने भी उदय भाव में हम पढ़ा था ये सब जो जानता है अपना अस्तित्व शुद्धता। इसका मतलब ये है कि जितने भी उदय भाव थे देहादिक भाव थे उसमें जो हम पड़ा चलता था वो छूट जाता है, इसलिए अपना अस्तित्व को भूल गए ऐसा कहते हैं।
इसी को सवार ग्रंथक कहते हैं, इसी को
सवार ग्रंथक बोलते हैं। मेरी तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है उसको इसके चरण में समर्पित हमने तो कर दिया है ऐसा करते हैं। और यही पराभक्ति है। अब कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में अंतर ही नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अगर जो कोई अंतर मानता है तो उसे मार्ग की प्राप्ति परम निकट है। ये बातें बता दी सारे ग्रंथ में, ये बातें बता दी कि उसको मार्ग की प्राप्ति बहुत निकट है। इस तरह कैसे मानने में कि परमात्मा 13वें 14वें गुण स्थान को बोला जाता है और चतुर्थ गुण स्थान वाले को नहीं बोलना चाहिए, उसको मार्ग की प्राप्ति परम विकट है, उसको मंदन नहीं करने वाले का तो कोई क्लास ही नहीं है इधर इसका तो कोई क्लास नहीं है, वो तो विमुख हो गया। लेकिन अंतर डाले कि ये 13वां 14वां वाला परमात्मा और 4था वाला परमात्मा नहीं, तो उसको मार्ग की प्राप्ति है।
तो ये रहस्य बुद्ध प्रश्न 527 में पूछा है, ये जो आपने भेजे और रहस्य आपने बताया, ये रहस्य पत्र नंबर 527 में रखा है।
527 ये क्या बात है,
महावीर भगवान माँ भाई
महावीर स्वामी से आज के जैन शासन का प्रवर्तन हुआ है। वे अधिक उपकारी या प्रत्यक्ष हित में प्रेरक और हित के निवारक से अध्यात्म प्रति सतगुरु अधिक उपकारी टेस्ट लिया है सुभाष भाई का। महावीर स्वामी उपकारी है किसी दालिक में विराजमान है, वो उपकारी है या कोई प्रत्यक्ष सतगुरु है वो उपकारी है, कौन यह प्रश्न माकू भाई की तरफ से है। इस विषय में इतना ऊंचा रहता है कि महावीर स्वामी सर्वज्ञ है और प्रत्यक्ष पुरुष आत्मज्ञ समय दृष्टि है, वो सर्वज्ञ है वो आत्मज्ञ है समय दृष्टि है, अर्थात महावीर स्वामी विशेष गुण स्थान में वर्तमान थे, 13वें गुण स्थान में वर्तते थे, और महावीर स्वामी की प्रतिमा की वर्तमान भक्ति करें 13वें गुण स्थान वाले अरिहंत प्रतिमा बना करके विराजमान करें, उतने ही भाव से परमात्मवत प्रत्यक्ष सदगुरु की भक्ति करें, इन दोनों में विशेष हित योग्य कौन है, कौन कहना योग्य है, उसका उत्तर आप दोनों विचार कर सविस्तर लिखिएगा आपके मत क्या काम करती है बताइए। भगवान की भक्ति करें ये उपकार है या सदगुरु की भक्ति करें, सदगुरु
जिन प्रतिमा तो तदाकार जिन्हें रहते हैं, जिन प्रतिमा जिन सार के, फिर भी यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं
कि ये तो परोक्ष है, महावीर स्वामी तो परोक्ष होंगे। प्रश्न चला परोक्ष लेना परोक्ष है परोक्ष है प्रत्यक्ष है तो कठिन पड़ता है वस्तु स्थिति में जो है सो
है।
मार्ग कोई न तो महावीर स्वामी के पक्षपात का है, न कांजी स्वामी के पक्षपात पाता है, न सुंदर जी के पक्षपात का है, नाम धारी के पक्षपात का तो मार्ग नहीं होता है, संप्रदाय बन जाता है, ये संप्रदाय की चीज नहीं है। ये तो ऐसा समुद्र है कि जिसको किनारा नहीं है, वैसे तो समुद्र को किनारा होता है, लेकिन ये जैन शासन ऐसा कोई समुद्र है कि जिसको किनारा नहीं है, तो किनारे में बंधता नहीं, मुझे तो उसकी हद आ जाती है जिसको कोई किनारा ऐसा इतना विशाल है।
इसका क्या उत्तर समझ में आता है, क्या उत्तर दिया होगा सवाल सुना भाई, इसका क्या उत्तर दिया होगा,
वो तो हमने नोट करवाया है,
नहीं है लेकिन वो आप
सुभाग भाई ने तो किया ही है, महावीर स्वामी से अधिक है आप हमारे लिए, तो महावीर स्वामी से भी अधिक है। सुभाष भाई दूसरा नहीं कहेंगे, दूसरे को होता तो कुछ भी कह देता, सुभाष भाई कहने वाले नहीं थे, ऐसा ही कहने वाले थे, ये बात है। सुभाष भाई का उत्तर पढ़े बिना हम कह सकते हैं कि सुभाष भाई ने ऐसा ही उत्तर दिया था, दूसरा उत्तर नहीं दिया था, देख लेना आप कहेंगे। हमारे यहाँ में अगर पत्र मिल जाए नोट तो करवाया क्षेत्र में क्या उत्तर दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, गारंटेड बात है। आया कि नहीं आया है वो आंखें के गुरु थे, क्या पता चल गया कि अभी मेरी मृत्यु आने वाली है, तो गेट पर दर्शन हुए ना, तो गेट शुद्ध माउंट का उसको क्या है, तो गेट शुद्ध माउंट में मेरा ये छोड़ जा गया, ठिकानी लगा उनको बदनाम पर छुटेगा, सुनना पर नहीं छुटाएगा, तो अनुमान तो आ गया, शारीरिक अवस्था भी वृद्धावस्था और रोग से ग्रसित अवस्था थी, सत्य उतने थी कि टिकने का कोई आधार नहीं दिखता था, तो उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कि मैं तो आ सकूँ, ऐसे तो कोई मेरी शरीर की परिस्थितियाँ हैं, और आप कुछ पिछले छः महीने से करीब करीब छः महीने से, मैं आज आऊँगा, मैं कल आऊँगा, मैं हफ्ते के बाद आऊँगा, मैं दो हफ्ते के बाद आऊँगा, क्या कर रखी है, ऐसा क्यों करते हो,